नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।